एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है सभी सुनने वालों का। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सफलता को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है।
एंजेला डकवर्थ की ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस।
बिल्कुल, और ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प, मतलब एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है
जी,
कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनके पास शायद दुनिया भर का टैलेंट ना भी हो वो कमाल कर जाते हैं।
हाँ, जबकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली लोग
वो पीछे रह जाते हैं।
तो क्या कामयाबी सिर्फ पैदाइशी हुनर, मतलब टैलेंट का ही खेल है?
यही वो सवाल है जो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है।
हाँ,
आजकल हम अक्सर टैलेंट को ही सब कुछ मान बैठते हैं ना।
हाँ बिल्कुल,
एक तरह का जुनून सा है टैलेंट को लेके।
लेकिन ये किताब कहती है कि असली चीज शायद कुछ और है, जिसे डकवर्थ ग्रिट कहती हैं।
ग्रिट यानी किसी लंबे लक्ष्य के लिए आपका जुनून और मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की आपकी जिद।
तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये ग्रिट आखिर है क्या बला, और कैसे ये जुनून और दृढ़ता मिलकर असल में कामयाबी की कहानी लिखते हैं।
और इस खोज में हमारी गाइड हैं एंजेला डकवर्थ। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक या प्रोफेसर नहीं है जो सिर्फ सिद्धांतों की बात करें, उनकी कहानी थोड़ी अलग है।
हाँ, और यही बात उनके काम को इतना जमीनी और भरोसेमंद बनाती है, मुझे लगता है। देखिए, एकेडमिक दुनिया में आने से पहले उन्होंने मैकिन्ज़ी जैसी बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में काम किया।
हाँ, जहाँ टॉप लेवल के कामयाब लोगों को उन्होंने बहुत करीब से देखा होगा।
बिल्कुल, और फिर एकदम दूसरी तरफ उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को गणित भी पढ़ाया।
और वहीं उसी क्लासरूम में उन्हें एक पहेली सी दिखी, एक अजीब सी चीज नजर आई। उन्होंने पाया कि कुछ बच्चे जो बहुत होशियार थे, जिनके नंबर हमेशा अच्छे आते थे, वो असल जिंदगी की चुनौतियों में मतलब थोड़ा जूझ रहे थे।
हाँ, जबकि कुछ औसत समझे जाने वाले बच्चे
अपनी मेहनत और लगन से कमाल कर रहे थे। इसी चीज ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि भाई, ये आईक्यू या नंबरों के अलावा भी कुछ है जो सफलता तय करता है।
बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो फिर मनोविज्ञान की दुनिया में गईं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जैसी जगहों से पढ़ाई की,
और फिर अपना रिसर्च ग्रिट और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुणों पर केंद्रित किया।
उनके काम को इतनी पहचान मिली कि उन्हें 2013 में मैकार्थर जीनियस ग्रांट भी मिला।
तो वो किताबी ज्ञान और असल दुनिया के तजुर्बे का एक बेहतरीन मिश्रण लेकर आती हैं।
हाँ, और उन्होंने कैरेक्टर लैब नाम की एक संस्था भी शुरू की जो बच्चों में इन्हीं गुणों को, मतलब चरित्र निर्माण पर काम करती है।
तो ये किताब असल में करती क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद, जैसा आपने कहा, उस मिथक को तोड़ना है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट या पैदाइशी हुनर से मिलती है। डकवर्थ साफ कहती हैं कि हम समाज के तौर पर इस टैलेंट के पीछे कुछ ज्यादा ही दीवाने हैं,
और ये दीवानगी कई बार हमें कोशिश करने से ही रोक देती है, है ना? अगर हमें लगता है कि कोई चीज हमारे बस की नहीं क्योंकि हम उतने टैलेंटेड नहीं हैं, तो हम शायद मेहनत ही ना करें।
सही बात है। किताब का मूल तर्क यही है कि असाधारण उपलब्धि के लिए सबसे जरूरी चीज है ग्रिट, यानी लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्यों के लिए जुनून और दृढ़ता का मेल।
और ये सिर्फ खिलाड़ियों या कलाकारों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। माता पिता, शिक्षक, लीडर, छात्र, हर कोई जो खुद को या दूसरों को बेहतर बनाना चाहता है।
डकवर्थ ये नहीं कहती कि टैलेंट बेकार है, बिल्कुल नहीं। वो मानती हैं टैलेंट जरूरी है, लेकिन वो कहती हैं कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो मेहनत की है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प फॉर्मूला दिया है।
हाँ, वो फॉर्मूला वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। वो कहती हैं, प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर कौशल।
यानी आपका टैलेंट और आपकी मेहनत मिलकर आपका स्किल बनाते हैं। टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल स्किल।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला कदम है कौशल गुणा प्रयास बराबर उपलब्धि।
स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट, मतलब उस स्किल से कुछ हासिल करने के लिए फिर से मेहनत लगती है।
ध्यान दिया, प्रयास यानी एफर्ट दो बार आया।
हाँ, यही इस किताब का शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला निचोड़ है। ये पूरी सोच बदल देता है। ये कहता है कि आपकी मेहनत का वजन आपकी प्रतिभा से दोगुना है। ये सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं, ये लगन की कहानी है।
तो सवाल उठता है कि ये ग्रिट चीज आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों में होती है?
नहीं, किताब कहती है नहीं, इसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है।
चलिए देखते हैं कैसे। किताब हमें वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के एक बड़े दिलचस्प अध्ययन पर ले जाती है।
हाँ, वेस्ट पॉइंट जहाँ अमेरिका के सबसे काबिल छात्र जाते हैं। एडमिशन ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है जिसे बीस्ट बैरक्स कहते हैं। कई कैरेट्स इसे बीच में ही छोड़ देते हैं।
हाँ, तो डकवर्थ की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कौन टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा इस मुश्किल ट्रेनिंग में।
और नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये था कि कौन कैडेट ट्रेनिंग पूरी करेगा इसका सबसे अच्छा अंदाजा न तो उनके स्कूल के नंबरों से लगा, न फिजिकल फिटनेस से, और न ही लीडरशिप के आकलन से।
तो फिर किससे?
सबसे सटीक भविष्यवाणी हुई उनके ग्रिट स्कोर से।
अच्छा, मतलब जिसमें जितनी ज्यादा ग्रिट उसके टिके रहने की संभावना उतनी ज्यादा।
बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो टिके रहने की क्षमता कितनी जरूरी है।
किताब आगे ये भी बताती है कि हम टैलेंट को जरूरत से ज्यादा क्यों सराहते हैं। इसे वो टैलेंट बायस कहती हैं।
हाँ, हमें वो कुदरती या जन्मजात प्रतिभा की कहानियां बहुत अच्छी लगती है ना, कि अरे वो तो पैदा ही ऐसा हुआ था।
बिल्कुल, लेकिन डकवर्थ कहती हैं कि ये सोच खतरनाक हो सकती है। क्यों?
क्योंकि ये हमें कोशिश करने से रोकती है। अगर हम मानते हैं कि महानता सिर्फ पैदाइशी होती है तो हम अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं।
सही कहा। डकवर्थ ने दार्शनिक नीचे का भी जिक्र किया है, जिन्होंने कहा था कि हम किसी को जीनियस कहकर असल में खुद को उसकी मेहनत और संघर्ष से तुलना करने से बचा लेते हैं।
हाँ, एक तरह का बहाना बन जाता है ना, अरे वो तो जीनियस है, मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ।
बिल्कुल। तो फिर सवाल है, अगर ग्रिट इतनी जरूरी है तो इसे अपने अंदर कैसे जगाएं, इसे कैसे बढ़ाएं? डकवर्थ इसके चार मनोवैज्ञानिक तत्व बताती हैं। पहला है रुचि, इंटरेस्ट।
हाँ, और यहाँ एक जरूरी बात वो कहती हैं कि जुनून या पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है या किसी दिन अचानक से मिल जाती है।
अच्छा, तो फिर?
वो कहती हैं कि इसे खोजना पड़ता है, इसे विकसित करना पड़ता है। ये जिज्ञासा से शुरू होता है। आप नई चीजें आजमाते हैं, देखते हैं कि किसमें मजा आ रहा है, और फिर धीरे धीरे लगातार लगे रहने से वो रुचि गहरी होती जाती है, जुनून में बदलती है।
मतलब अगर किसी को लगता है कि मुझे मेरा पैशन नहीं मिला तो शायद उन्हें कोशिश करते रहने की जरूरत है, रुचि विकसित करनी पड़ती है।
बिल्कुल।
दूसरा तत्व है अभ्यास, लेकिन यहाँ वो साफ करती हैं कि सिर्फ घंटों तक एक ही काम करते रहना नहीं है।
हाँ, ये वो रट्टा मारने वाला अभ्यास नहीं है।
नहीं, ये है डेलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सोच समझकर किया गया अभ्यास।
इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन पर ध्यान देना, एक साफ लक्ष्य बनाना कि मुझे क्या बेहतर करना है, पूरी तरह फोकस होकर काम करना, फिर फीडबैक लेना और उसके आधार पर सुधार करना।
क्या घंटों लगे रहना ही काफी नहीं है?
डकवर्थ कहती हैं नहीं, ये तरीका अक्सर थकाने वाला और मुश्किल होता है, आरामदायक नहीं होता।
हाँ, जैसे मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन ने बताया था, महारत हासिल करने के लिए यही तरीका काम आता है, मुश्किल लेकिन असरदार।
बिल्कुल। तीसरा है उद्देश्य, पर्पस। डकवर्थ ने पाया कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ग्रिट होती है वो अपने काम को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करते।
अच्छा।
वो अपने जुनून को किसी बड़े मकसद से जोड़ते हैं, ये सोच कि उनका काम दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, दुनिया में कोई सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
मतलब सिर्फ नौकरी या पैसा नहीं?
नहीं, उससे बढ़कर कुछ। ये क्यों, ये मकसद उन्हें तब भी आगे बढ़ाता रहता है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है, ये उनके काम को एक मतलब देता है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और चौथा?
और चौथा तत्व है आशा, होप। लेकिन ये सिर्फ सब ठीक हो जाएगा वाली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है।
तो फिर कैसी उम्मीद?
ये एक खास तरह की उम्मीद है, ये मानना कि मुश्किलें और हार अस्थाई हैं और हमारी कोशिशों से हालात बदल सकते हैं, हम बेहतर हो सकते हैं।
मतलब हार ना मानना।
हाँ, हार मान लेना आसान है, पर ये सोच हमें गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है, और इस सीधे तौर पर कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ा है।
हाँ, वो वाला आइडिया कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, मेहनत से बढ़ती है, फिक्स्ड नहीं है।
एग्जैक्टली। तो ये चार चीजें हैं, रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और आशा, जो ग्रिट को अंदर से बनाती हैं।
तो ये तो हुई अपने अंदर ग्रिट जगाने की बात, लेकिन क्या बाहरी दुनिया भी इसमें कुछ मदद कर सकती है? क्या बाहर से भी कुछ असर पड़ता है?
बिल्कुल। किताब कहती है कि माहौल का भी बहुत बड़ा रोल है, इसे वो बाहर से अंदर वाला तरीका कहती है। इसमें सबसे पहले आता है पेरेंटिंग, या कहें परवरिश का तरीका,
माता पिता की भूमिका।
हाँ, डकवर्थ वाइज पेरेंटिंग की बात करती हैं, मतलब समझदार परवरिश।
ये क्या होती है?
ये ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों से उम्मीदें भी रखते हैं, मतलब उनसे कुछ करने की अपेक्षा रखते हैं, और साथ ही उन्हें भरपूर प्यार और सपोर्ट भी देते हैं।
मतलब न तो बहुत ज्यादा सख्त, न ही जरूरत से ज्यादा छूट, एक बैलेंस।
बिल्कुल, वो बच्चों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करने देते हैं, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने का मौका देते हैं, लेकिन हमेशा उनके पीछे खड़े रहते हैं भावनात्मक रूप से।
हाँ, डकवर्थ अपने परिवार का एक नियम बताती हैं, हार्ड थिंग रूल। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा।
हाँ बताइए उसके बारे में।
मतलब परिवार में हर किसी को, बच्चों को भी और बड़ों को भी, कोई एक मुश्किल चीज चुननी है।
जैसे?
जैसे कोई खेल सीखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई मुश्किल विषय पढ़ना, और उसे कम से कम एक तय समय तक, जैसे एक साल या सेशन खत्म होने तक निभाना है।
अच्छा, बीच में छोड़ना नहीं है।
हाँ, आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी, पर उसे निभाना जरूरी है। कितना दिलचस्प तरीका है बच्चों में लगन डालने का।
वाकई। दूसरा बाहरी कारक है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी स्कूल के बाद की गतिविधियाँ,
जैसे खेल कूद, संगीत।
हाँ, खेल, संगीत, ड्रामा, डिबेट, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपको लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है, रोज अभ्यास करना पड़ता है, हार जीत का सामना करना पड़ता है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है,
ये सब ग्रिट सिखाने के बेहतरीन मैदान हैं, है ना?
बिल्कुल। रिसर्च दिखाती है कि किसी एक गतिविधि में कम से कम 2 साल टिके रहने से बच्चों में ग्रिट बढ़ती है, कम से कम 2 साल।
और तीसरा जो हम सबके लिए जरूरी है, चाहे हम बच्चे हों या दाएं बढ़े, संगठन या संस्कृति, कल्चर ऑफ ग्रिट।
मतलब हमारा माहौल।
हाँ, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स टीम हो, आपका स्कूल हो या आपका दफ्तर, लीडर्स ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां मेहनत को, सीखने की कोशिश को और हार न मानने वाले जज्बे को सराहा जाए।
किताब में कोच पीट कैरल की फुटबॉल टीम सिएटल सीहॉक्स या किप स्कूलों के उदाहरण हैं, जहां जानबूझकर ऐसा कल्चर बनाया गया है।
हाँ, जब आपके आसपास के लोग ग्रिटी होते हैं, जब आपकी संस्था ग्रिट को महत्व देती है, तो आपकी अपनी ग्रिट भी बढ़ती है, माहौल का असर पड़ता है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब से कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? मेरे लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी है, प्रयास प्रतिभा से ज्यादा मायने रखता है। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। हमारी मेहनत 2 बार गिनती होती है, पहले हुनर बनाने में और फिर उस हुनर से कुछ हासिल करने में। ये याद रखना बहुत जरूरी है।
दूसरा बड़ा सबक ये है, ग्रिट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये कोई 2 दिन का जोश नहीं है।
हाँ, शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी नहीं।
ये सालों तक बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने की क्षमता है। हमारे यहाँ जैसे परीक्षाओं के लिए आखिरी रात में पढ़ने का चलन है, ये उसके बिल्कुल उलट है। ये लंबे समय के समर्पण की बात है।
तीसरा, और ये मुझे बहुत राहत देने वाला लगा, जैसा आपने पहले कहा था, जुनून अचानक नहीं मिलता, उसे खोजना और विकसित करना पड़ता है। तो अगर किसी को लगता है कि उसे अभी तक अपना पैशन नहीं मिला, तो चिंता की बात नहीं है।
हाँ, कोशिश करते रहिए, चीजों को आजमाइए, रुचि अपने आप गहरी हो सकती है, रास्ता बन सकता है।
चौथा, मकसद का होना दृढ़ता को बनाए रखता है।
वो क्यों वाला सवाल।
हाँ,
जब हमें लगता है कि हमारे काम का कोई बड़ा मतलब है, वो सिर्फ हमारी नौकरी या कमाई से बढ़कर है, तो मुश्किलों से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। ये उस क्यों का जवाब है जो हमें हार मानने से रोकता है।
और शायद सबसे उम्मीद जगाने वाली बात, ग्रिट सीखी जा सकती है और इसे बढ़ाया जा सकता है।
हाँ, ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि या तो आपके पास है या नहीं है।
हम सब अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने माहौल में बदलाव करके ज्यादा ग्रिटी बन सकते हैं। ये हमारे हाथ में है।
बिल्कुल। और आखिर में ये भी कि माहौल और संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ होता है।
हाँ, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, हमारा दफ्तर, ये सब हमारी ग्रिट को बना या बिगाड़ सकते हैं।
एक ऐसा माहौल जहाँ कोशिश को सराहा जाए, जहाँ गलतियों से सीखने का मौका मिले, वो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। चलिए कुछ यादगार कथनों पर फिर से गौर करें। लहे जिसे भूलना नहीं चाहिए, टैलेंट इंटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल एंड स्किल इंटू एफर्ट इक्वल्स टू अचीवमेंट। ये बार बार याद दिलाता है कि मेहनत का रोल दुगना है। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस।
एक और जो ग्रिट के असली मतलब को समझाता है, ग्रिट इज पैशन एंड परसिवियरेंस फॉर वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स। ग्रिट इज हैविंग स्टैमिना, वर्किंग रियली हार्ड टू मेक दैट फ्यूचर अ रियलिटी। ये सिर्फ जुनून नहीं, ये लंबे समय तक टिके रहने की ताकत है, सालों तक मेहनत करने का जज्बा है, स्टैमिना।
ये भी बहुत दमदार है और शायद थोड़ा छुपने वाला भी। विदाउट एफर्ट योर टैलेंट इज नथिंग मोर देन योर अनमेट पोटेंशियल। विदाउट एफर्ट योर स्किल इज नथिंग मोर देन व्हाट यू कुड हैव डन बट डिडंट।
ओहो
सीधी बात,
हाँ
सीधी बात, बिना मेहनत के आपका टैलेंट बस एक संभावना है, हकीकत नहीं। आपका हुनर बस वो है जो आप कर सकते थे पर किया नहीं। ये हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है।
और एक छोटी लेकिन गहरी बात, इंथुजियाज्म इज कॉमन, इंड्योरेंस इज रेयर।
उत्साह आम है, धीरज दुर्लभ है।
सोचिए कितनी ही चीजें हम जोश में शुरू करते हैं, नया साल, नई शुरुआत।
हाँ बिल्कुल, जिम जाना, नई भाषा सीखना।
लेकिन जब शुरुआती मजा खत्म होता है, जब मुश्किलें आती हैं, तब कितने लोग टिके रहते हैं? वही धीरज, वही टिके रहना ग्रिट है।
तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें?
हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करें, व्यक्तिगत स्तर पर?
शायद सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, ये सोचना कि मैं ये अभी नहीं कर सकती, बजाय ये सोचने के कि मैं ये कर ही नहीं सकती।
हाँ, वो अभी शब्द जोड़ना, ये छोटा सा बदलाव बहुत फर्क ला सकता है।
और शायद डकवर्थ का हार्ड थिंग रूल अपने लिए अपनाना, कोई एक मुश्किल चीज चुने जिसे आप सीखना या करना चाहते हैं।
और तय करें कि कम से कम एक साल तक उस पर टिके रहेंगे, चाहे जो हो जाए।
बिल्कुल, और हाँ, जिस भी काम में बेहतर होना चाहते हैं उसमें सिर्फ समय बिताने के बजाय डेलिबरेट प्रैक्टिस करें।
हाँ, ध्यान से अभ्यास, कमजोरियों पर काम और फीडबैक, साथ ही अपने काम में एक बड़ा मकसद ढूंढने की कोशिश करें, या आपको क्यों करना है, वो क्यों ढूंढना।
माता पिता और शिक्षकों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, जैसा हमने बात की।
हाँ, बच्चों की तारीफ करते समय
उनकी होशियारी या टैलेंट की बजाय उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, उनकी स्ट्रैटेजी और सीखने की लगन की तारीफ करें।
तुमने बहुत मेहनत की या तुमने हार नहीं मानी, ये बहुत अच्छा है। ये बातें तुम बहुत स्मार्ट हो से ज्यादा असरदार हैं।
बिल्कुल, खुद ग्रिट का उदाहरण बने। और वाइज पेरेंटिंग, उम्मीदें रखें पर साथ में भरपूर प्यार और सपोर्ट भी दें, वो संतुलन जरूरी है।
लीडर्स और संगठनों के लिए भी ये बहुत काम का है।
हाँ, दफ्तर के माहौल में
जब आप किसी को नौकरी पर रख रहे हो, तो सिर्फ डिग्री या पिछले अनुभव के साथ साथ ये भी देखें कि उस इंसान में कितनी ग्रिट है।
कैसे पता चलेगा?
इंटरव्यू में पूछें कि उन्होंने किसी लंबी मुश्किल चुनौती का सामना कैसे किया, असफलता से कैसे निपटें, उनकी कहानियां सुनें।
और अपने दफ्तर में ऐसा कल्चर बनाएं जहां कोशिश करने को, नई चीजें आजमाने को और यहां तक कि असफल होकर सीखने को भी सराहा जाए, डर का माहौल ना हो।
हाँ, जहां लोग रिस्क लेने से डरे नहीं।
बिल्कुल, और अपनी टीम को यह समझने में मदद करें कि उनका रोज का काम कंपनी के बड़े लक्ष्यों और मकसद से कैसे जुड़ता है।
हाँ, वो बड़ी तस्वीर दिखाना।
जब लोगों को लगता है कि उनके काम का कोई मतलब है, तो वो ज्यादा टिकते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। ये उनके व्यक्तिगत रोल को एक बड़े विजन से जोड़ता है।
अगर मुझसे पूछे तो मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता सिर्फ कुछ गिने चुने किस्मत वाले या टैलेंटेड लोगों की जागीर नहीं है।
हाँ, ये डेमोक्रेटाइज करती है सफलता को।
बिल्कुल, ये जानना बहुत हिम्मत देता है कि हम सब अपनी मेहनत, लगन और टिके रहने की क्षमता से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सफलता के दरवाजे सबके लिए खोलता है।
और मुझे ये बात बहुत काम की लगी कि जुनून कोई ऐसी रहस्यमयी चीज नहीं जिसे ढूंढना है, बल्कि जिसे धीरे धीरे कोशिश करके विकसित करना है।
हाँ, वो दबाव कम हो जाता है कि मुझे मेरा पैशन क्यों नहीं मिल रहा।
बिल्कुल, रास्ता चलने से बनता है। साथ ही डेलिबरेट प्रैक्टिस का विचार कि कैसे सही तरीके से फोकस के साथ मेहनत करके हम वाकई बेहतर बन सकते हैं, ये सिर्फ घंटों तक रट्टा मारने या अभ्यास करने से बहुत अलग है। ये हमें अपने सुधार पर ज्यादा कंट्रोल देता है।
तो ये थी हमारी आज की चर्चा एंजेला डकवर्थ की ग्रिट पर। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम सफलता, प्रतिभा और मेहनत को कैसे देखते हैं।
हाँ, और शायद ये हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी और ग्रिट लाने के लिए प्रेरित करे।
बिल्कुल, और अंत में एक सवाल जो शायद हम सब सोच सकते हैं,
क्या
अगर ग्रिट इतनी जरूरी है और सीखी जा सकती है, तो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे काम करने की जगहें इसे जानबूझकर बढ़ावा देने के लिए और क्या कर सकती हैं?
ये बड़ा सवाल है, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।